अकर्म, जड़ता या आलस्य को कहते हैं। कर्म करते समय हमें उसके इन दो रूपों से बचना पड़ता है और जीवन के कर्तव्य कर्मों को करते हुए उनका फलाफल भगवान पर छोड़ देना होता है। यही वस्तुतः योग है। कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। कई लोग इसकी बड़ी विचित्र व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य अपना काम बड़ी कुशलता से कर ले तो वह योगी कहलाने के लायक है। तब तो तात्पर्य यह हुआ कि यदि सुनार बड़ी कुशलता से अपना कार्य करता हो तो वह योगी है, दुकानदार बड़ी कुशलता से अपनी दुकान का काम करता हो तो वह योगी है, और इसी प्रकार एक पॉकेटमार बड़ी कुशलता से अपना काम कर लेता हो तो वह भी योगी बन गया। पर क्या हम कभी ऐसे तर्क को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। तब फिर कर्म की कुशलता का क्या मतलब हुआ? श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं। शहद का एक छत्ता है, उसमें से हम शहद निकालना चाहते हैं, हमें कुशल कब कहा जाएगा? तब जब हम शहद इस प्रकार निकालें कि हमें मधुमक्खियां काट न खाएं। इसी प्रकार कर्म की कुशलता तब होती है जब कर्म तो किए जाएं पर कर्म का बंधन कर्ता पर न लग सके। योगः कर्मसु कौशलम् का यही अर्थ है। हम में कौन नहीं जानता कि क्रोध करना बुरा है, फिर भी हम क्रोध के चंगुल से बच नहीं पाते। क्रोध अंतःकरण की वह वृत्ति है जो इच्छा की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न होती है। यह वृत्ति केवल अंतःकरण तक अपने को सीमित नहीं रखती, वरन इसकी प्रतिक्रिया शरीर पर भी होती है। आंखें लाल हो जाती हैं, ओठ फड़कने लगते हैं और शरीर थरथर कांपने लगता है, चेहरा तन जाता है और मनुष्य खूंखार दिखने लगता है। क्रोध धीरे धीरे विवेक पर पर्दा डाल देता है जिससे बुद्धि उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाती। गीता के अनुसार क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण होता है। वहां बताया गया है कि क्रोध से सम्मोह पैदा होता है जिससे भले बुरे का विचार ढक जाता है। इसे स्मृति विभ्रम कहकर पुकारा गया है। क्रोध के आवेश में हम भूल जाते हैं कि ये हमारे आचार्य हैं, पूज्य हैं, माननीय हैं। इस प्रकार के स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश होता है। मनुष्य नहीं समझ पाता कि उसके लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय, फलस्वरूप वह नष्ट हो जाता है। क्रोधावेश पैदा होने पर बुद्धि कुछ समझने से इनकार कर देती है, हमारी समूची चेतना तब क्रोध के रंग से रंग जाती है। कथा आती है कि जब कवि रामचरित लिख रहे थे तो उन्होंने वर्णन किया कि राम रावण युद्ध के समय लंका में एक विशेष प्रकार के सफेद फूल खिले हुए थे। जब हनुमान जी को यह मालूम हुआ तो उन्होंने आपत्ति की और कहा कि फूल सफेद नहीं लाल थे, पर कवि ने इसे स्वीकार नहीं किया। तब बात श्री राम तक गई और कवि तथा हनुमान दोनों ने श्री राम से इसका फैसला चाहा। राम बोले, हनुमान, कवि ने जो लिखा है वही सत्य है, फूल सफेद ही थे, पर तुम तब क्रोधावेश में थे इसीलिए फूल तुम्हें लाल दिख रहे थे। इस क्रोध को गीता में महापेटू और महापापी कहा गया है। यह कितना भी खाए पर संतुष्ट नहीं होता और ऐसा कोई पाप नहीं है जो वह न करा देता। अतएव क्रोध से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। क्रोध से बचने का एक सार्थक उपाय यह है कि क्रोध आने पर उस स्थान का तुरंत त्याग कर दे। दूसरा उपाय यह है कि उस समय अपने मन में ऐसे व्यक्ति का चित्र लाकर खड़ा कर ले जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता है। जैसे आपका छोटा सा बच्चा है, आपको कभी बहुत क्रोध आ गया तो आप अपने उस छोटे बच्चे को अपने मन में लाइए तो आप देखेंगे धीरे धीरे क्रोध का उफान कम होता जा रहा है। तीसरा उपाय ऐसा है कि जब भी क्रोध की वृत्ति जागे तो मन पर यह संस्कार डालने का अभ्यास करे कि अभी नहीं, कुछ देर बाद क्रोध की घटना पर विचार करूंगा। इससे क्रोध का उफान धीरे धीरे दूर हो जाएगा और हम घटना पर उसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार कर सकेंगे। हाँ, कभी कभी क्रोध इतना अचानक और तेज होता है कि बवंडर के समान हमारे मन को छा लेता है। हमें उसका भान तब होता है जब हम क्रोध कर चुके होते हैं और उसकी प्रतिक्रियाएं हो चुकी होती हैं। पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त तीन उपायों का धैर्य पूर्वक अभ्यास करते हुए हम धीरे धीरे इस क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करने की शक्ति हासिल कर लेंगे। पर यह स्मरण रहे कि क्रोध नहीं करने का तात्पर्य कायरता नहीं। जहां किसी को सुधारने के लिए क्रोध करना आवश्यक हो, वहां उसका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जहां पर कोई व्यक्ति अन्याय करता हो तो अवश्य उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए क्रोध किया जाना चाहिए। जब माता पिता अपने छोटे बच्चे पर क्रोध करते हैं तब वे उसके भले के लिए ही करते हैं, गुरु शिष्य के कल्याण के लिए ही उस पर क्रोध करते हैं। हमें केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्रोध की वृत्ति को अपने वश में रखें, हम स्वयं उस वृत्ति के वश में न हो जाएं। हम काटने से तो परहेज करें, फुफकारने से नहीं। मेरे एक परिचित हैं, धर्म प्रेमी हैं, ईश्वर भक्त हैं, सत्संग में जाते हैं। उस दिन घबराए हुए से मेरे पास आए, कहने लगे, गजब हो गया, मनुष्य तो ईश्वर हो गया। मैंने पूछा, क्या बात है? बोल उठे, अरे भाई, सृष्टि पैदा करने का काम ईश्वर का है, पर देखो आज मनुष्य विज्ञान के सहारे नई सृष्टि रच रहा है, नए उपग्रह बनाकर अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। चंद्रमा पर तो वह चला ही गया, अब मंगल में जाने की तैयारी कर रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग भी एक अंश में सफल हो ही गया। कल अब इस प्रयोग के सफल होने में क्या देरी है कि माता के गर्भ का सहारा न लेते हुए शिशु का जन्म प्रयोगशाला में हो जाए। मैंने फिर से पूछा, तो इससे क्या हुआ, आप इतने उद्विग्न क्यों हैं? वे बोले, क्यों, तब ईश्वर का स्थान कहां रहेगा? अगर मनुष्य ही ईश्वर की ताकत पाकर ईश्वर का सारा काम करने लगे तो ईश्वर की क्या आवश्यकता रहेगी? तब तो धर्म के अभाव में अनैतिकता का बोलबाला हो जाएगा। मैंने कहा, आज क्या अनैतिकता का बोलबाला नहीं है? जो लोग अपने को ईश्वर भक्त और धार्मिक प्रदर्शित करते हैं वे क्या अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं है? केवल विज्ञान की उन्नति से ही अनैतिकता बढ़ जाएगी। इस प्रकार का विचार रखने में मेरे भी परिचित व्यक्ति अकेले नहीं है, बल्कि बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। उनकी दृष्टि में धर्म को विज्ञान से खतरा दिखाई देता है, पर सही बात यह है कि धर्म को विज्ञान से नहीं अनैतिकता से खतरा है। जो धर्म ध्वजी हैं, धर्म का झंडा तो फहराते हैं पर अधर्म का आचरण करते हैं, ऐसे लोगों से धर्म और ईश्वर को खतरा है। यदि विज्ञान मनुष्य में निहित असीम शक्ति को प्रकट कर रहा है तो वह वेदांत के इस सिद्धांत की ही तो पुष्टि कर रहा है कि जीव शिव है, हर आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य ईश्वर के ही समान सब कुछ करने में समर्थ है, उसमें अनंत शक्ति है, पर अज्ञान के कारण वह अपने ईश्वरत्व का बोध नहीं कर पाता। मनुष्य दो धरातलों पर कार्य करता है, एक है शरीर का और दूसरा मन का। यदि वह अज्ञान के बंधनों को काट सके तो वह दोनों धरातलों पर असीम शक्ति संपन्न हो जाएगा। शरीर भौतिक धरातल है और इसी पर विज्ञान की अलौकिक शक्तियां प्रकट हुई हैं। यह जो मनुष्य नई सृष्टि रच रहा है, उपग्रह बना रहा है, यह इसी सत्य की पुष्टि करता है कि मनुष्य में अनंत शक्ति है। यह जैसे बाहरी जगत के संदर्भ में सत्य है, वैसे ही भीतरी जगत के संदर्भ में भी। यदि किसी दिन गर्भ के बाहर प्रयोगशाला में स्वस्थ शिशु का जन्म हो जाए तो उससे ईश्वर को कोई आंच न आएगी, बल्कि मनुष्य का ईश्वरत्व और सिद्ध हो जाएगा। गड़बड़ी इसलिए उत्पन्न होती है कि हम ईश्वर को व्यक्ति विशेष समझते हैं और कल्पना करते हैं कि वह कहीं विराजित होगा और वहां से विश्व का कामकाज चला रहा होगा। ईश्वर वास्तव में ऐसा नहीं है, वह तो विश्व में सर्वत्र व्याप्त सर्वानुस्यूत नियम है जिसे बुद्ध ने धम्म कहकर पुकारा। आइंस्टाइन की भाषा में कहें तो वह सुप्रीम इंटेलिजेंस यानी महत बुद्धि है। जैसे धर्म इस महत्बुद्धि अथवा सर्वव्यापी नियम की खोज है, उसी प्रकार विज्ञान भी इसी की खोज है। विज्ञान ज्ञान की अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति को कहते हैं। जब हम इंद्रिय ग्राह्य जगत को छानबीन का विषय बनाकर उस सर्वानुस्यूत नियम को पकड़ने जाते हैं तो वह विज्ञान की प्रणाली कहलाता है, और जब मन को खोज का विषय बनाकर उस ओर बढ़ते हैं तो वह धर्म की प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अज्ञान की परतें यदि हट जाएं तो मनुष्य का छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो जाता है। मनुष्य अनैतिक इसलिए हो जाता है कि वह अपने को मात्र देह में आबद्ध एक प्राणी मानता है, इसीलिए वह स्वार्थ केंद्रित हो जाता है। पर यदि उसमें अपने ईश्वरत्व का बोध जागे तो वह अपने स्वार्थ की संकीर्ण सीमा से ऊपर उठेगा और अधिक व्यापक दृष्टि का अधिकारी बनेगा। धीरे धीरे वह अपने में निहित सत्य को बाहर दूसरों में भी देखने में समर्थ होगा। इसी को मनुष्य के ईश्वरत्व का जागरण कहते हैं। हमारा जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। संसार जब तक अस्तित्व में है तब तक सुख और दुख दोनों बने रहेंगे। वे मानो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसी अवस्था जीवन में कभी नहीं आएगी जब केवल सुख ही सुख रहे और दुख बिल्कुल मिट जाए। तब फिर दुखों के नाश का क्या तात्पर्य है? हमारे धर्म शास्त्र यह बताते हैं कि जिस प्रकार सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार दुख की निवृत्ति भी मन की ही अवस्था है। मन की यह अवस्था अभ्यास से प्राप्त की जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस इसका एक सुंदर उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार में बड़े घर की दासी के समान रहो, यही दुख नाश का एकमात्र उपाय। बड़े घर की दासी बाबू का सारा कामकाज करती है, बाबू के बच्चों को नहलाती है, संवारती है, भोजन कराती है, घुमाने ले जाती है, मेरा राजा बेटा कहकर दुलार करती है। यदि बाबू का बच्चा कहीं गिर पड़े तो दासी मेरा लल्ला मेरा मुन्ना कहती हुई दौड़ पड़ती है, बच्चे को उठा लेती है, उसे पुचकारती और प्यार करती है। पर वह अपने मन में यह खूब जानती है कि वह उसका लल्ला उसका मुन्ना उसका राजा बेटा नहीं है। वह यह खूब जानती है कि उसका लल्ला उसका मुन्ना उसका राजा बेटा झोपड़ी में पड़ा रो रहा होगा। दासी यह अच्छी तरह जानती है कि बाबू जिस दिन नोटिस दे देंगे उस दिन से वह घर की दहलीज पर भी पैर नहीं रख सकेगी। वह जिसे आज मेरा लल्ला मेरा मुन्ना मेरा राजा बेटा कहकर गोद में उठाती है उसे तब छू भी नहीं सकेगी। तो क्या अपने बाबू के बच्चे के प्रति दासी यह जो प्रेम प्रदर्शित करती है वह सब दिखावा है? नहीं, वह दिखावा नहीं है। दासी सचमुच बच्चे को प्यार करती है, पर उस प्यार में आसक्ति नहीं है, ममत्व नहीं है। आसक्ति न होने के कारण उसमें बच्चे के प्रति मेरापन नहीं हो पाता। ममत्व मेरापन या आसक्ति के बिना भी प्रेम संभव होता है, और यही यथार्थ प्रेम है। आसक्ति विरहित ऐसा प्रेम हमें दुख के ऊपर उठाने की शक्ति देता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बड़े घर की दासी की तरह रहो। घर गृहस्थी है, स्त्री पुत्र कलत्र हैं, कोई दोष नहीं। सोचो कि वे सब भगवान के दिए हुए हैं, अतएव भगवान के हैं। सबको अपना कहो, प्रेम दिखाओ सबके प्रति। पत्नी को मेरी प्रिय कहो, पति को मेरे प्रियतम कहो, बच्चों को मेरे लाल मेरी मुन्नी कहो, कोई दोष नहीं। पर हृदय के अंतरतम प्रदेश से यह जानो कि वास्तव में इनमें से मेरा कोई भी अपना नहीं है, ये सब भगवान के हैं। जिस दिन भगवान का नोटिस आ जाएगा कोई मेरा न रह जाएगा, सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे या मैं ही सबको छोड़कर चला जाऊंगा। वास्तव में यदि कोई मेरा अपना है तो वे हैं ईश्वर, यदि कोई मेरी झोपड़ी है तो वह है प्रभु के चरण। यह ज्ञान भी भीतर जलाए रखो, यही संसार में रहने का रहस्य है। इसी ज्ञान से दुख की निवृत्ति होती है। यही बड़े घर की दासी के समान संसार में रहना है। मन पर इस विचारधारा का बार बार संस्कार डालना ही अभ्यास कहलाता है। जब यह अभ्यास सज जाता है तब सब कुछ ईश्वरमय हो जाता है। किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, वह भी ईश्वर की इच्छा है। यदि किसी कार्य में सफलता मिली तो वह भी ईश्वर की इच्छा है। यदि कोई कार्य न सधा तो वह भी ईश्वर की इच्छा है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ऐसा साधक निश्चेष्ट हो जाए, आलसी हो जाए, अकर्मण्य होकर कहने लगे कि प्रयत्न से क्या होगा, सब कुछ तो ईश्वर इच्छा पर निर्भर है। प्रत्युत इसका अर्थ यह है कि साधक क्रियाशील बने, प्रबल कर्म परायण हो। यदि कोई मृत्यु की शैया पर पड़ा हो तो उसे बचाने के लिए वह अथक प्रयत्न करे, और अगर बचा न सके तो कहे कि ईश्वर की इच्छा है। कार्य की सिद्धि के लिए जीतोड़ परिश्रम करे, पर यदि सफल काम न हो तो कहे कि ईश्वर की इच्छा है। यही रसायन है जो दुख पर मरहम का कार्य करता है। हम अपना सारा उत्तरदायित्व ईश्वर पर सौंप देते हैं, इसीलिए हमें दुख नहीं व्यापता। मुनीम साहूकार के व्यापार को चमकाने की अथक चेष्टा करता है। यदि साहूकार को घाटा आ गया तो मुनीम दुखित अवश्य होता है, पर घाटे का दुख उसे व्याप नहीं पाता, क्योंकि घाटा या लाभ उसका नहीं है, वह तो साहूकार का है। उसी प्रकार संसार मेरा नहीं है, ईश्वर का है। परिवार मेरा नहीं, ईश्वर का है। मैं तो मात्र एक मुनीम हूँ, भृत्य हूँ। यह भक्ति योगी की, कर्म योगी की भाषा है। मन की इसी अवस्था में दुखों का नाश संभव है। महात्मा गांधी अपने समीप के धनिकों को बारंबार ट्रस्टीशिप का उपदेश देते थे। उनका तात्पर्य यह था कि संपत्ति का स्वामी अपने को मत मानो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ही संपत्ति का स्वामी है और तुम उसकी सुरक्षा और देखरेख करने वाले ट्रस्टी हो। यह एक अमूल्य उपदेश है। जब मैं अपने को संपत्ति का स्वामी मानता हूँ तो उसके व्यय में किसी का हस्तक्षेप मैं स्वीकार नहीं करता। मैं मनमाने खर्च किए जाता हूँ, किसी का अंकुश मुझे भाता नहीं। पर यदि मेरे अंतःकरण में यह भावना बन जाए कि संपत्ति तो प्रभु की है और मुझ पर उसकी देखरेख का भार न्यस्त हुआ है, तो मैं खर्च के समय सावधान बना रहता हूँ और मेरी यह चेष्टा रहती है कि संपत्ति के किसी भी अंश का दुरुपयोग न होने पाए। संपत्ति पर स्वयं के स्वामित्व की भावना उसे साधारणतया दूसरे के काम में नहीं लगने देती, पर ट्रस्टीशिप का भाव कहता है कि यह संपत्ति दूसरों की सेवा के लिए समर्पित है। ट्रस्टी संपत्ति को भगवान की थाती के रूप में लेकर दुखियों, पीड़ितों और असहायों की सेवा में उसे लगाकर धन्यता का बोध करता है। विशेषकर मठ मंदिर और सार्वजनिक न्यासों की संपत्ति को जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए खर्च करता है, उसके समान निंदित व्यक्ति और कोई नहीं माना गया। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण में एक उद्बोधक कथा आती है। एक कुत्ते ने प्रभु राम के दरबार में आकर फरियाद की कि स्वार्थ सिद्ध नामक एक ब्राह्मण ने उसके सिर पर अकारण ही प्रहार किया है। उस ब्राह्मण को रामचंद्र जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वह बोला, हे राघव, मैं क्षुधित था, सामने कुत्ते को बैठा देख मैंने उससे हटने को कहा, उसके न हटने पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने उस पर प्रहार किया। महाराज, मुझसे अवश्य ही अपराध हुआ है, आप मुझे जो चाहें दंड दें। राजा राम ने अपने सभासदों से ब्राह्मण को दंड देने बाबत परामर्श किया। सबने एक स्वर से निर्णय दिया, ब्राह्मण को भले ही अवध्य कहा गया हो, पर आप तो परमात्मा के महान अंश हैं, अतः आप ही उचित दंड दे सकते हैं। इसी बीच कुत्ता बोला, प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप इसे कलिंजर मठ का मठाधीश बना दें। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि तब तो ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति से छुटकारा मिल जाता और मठाधीश होने के बाद उसे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती। रामचंद्र जी ने कुत्ते से ब्राह्मण को मठाधीश बनाने का प्रयोजन पूछा। इस पर कुत्ता बोला, राजन, मैं भी पिछले जन्म में कलिंजर का मठाधीश था। मुझे वहां बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलते थे। यद्यपि मैं पूजा पाठ करता, धर्माचरण करता, तथापि मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति देव, बालक, स्त्री और भिक्षुक आदि के लिए अर्पित धन का उपभोग करता है, वह नरकगामी होता है। यह ब्राह्मण अत्यंत क्रोधी और हिंसक स्वभाव का तो है ही, साथ ही मूर्ख भी है, अतः इसको यही दंड देना उचित है। इस कथा के माध्यम से यही बात ध्वनित की गई है कि जो सार्वजनिक संपत्ति को अपने ही स्वार्थ के लिए लगाता है उसकी दशा अंत में श्वान की सी होती है। इसके साथ ही यह बात भी सत्य है कि अपनी संपत्ति का भी केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मनुष्य को नैतिक दृष्टि से नीचे गिरा देता है। गीता की भाषा में मनुष्य को यह संपत्ति प्रकृति के यज्ञ चक्र से प्राप्त हुई है, अतः उसे उसका उपयोग यज्ञ चक्र के सुचारू रूप से चालित होने के निमित्त करना चाहिए। जैसे यदि कहीं पर वायु का अभाव पैदा हो तो प्रकृति तुरंत वहां वायु भेज देती है, उसी प्रकार जहां संपत्ति का अभाव है उसकी पूर्ति में जिसके पास संपत्ति है उसका उपयोग होना चाहिए। यही संपत्ति के द्वारा यज्ञ चक्र को पूर्ण बनाना है, इसी को ट्रस्टीशिप कहते हैं। यदि ऐसा न कर व्यक्ति संपत्ति का भोग स्वयं करे तो उसे गीता में स्टेन यानी चोर की उपाधि से विभूषित किया गया है। अपने पास जब आवश्यकता से कुछ अधिक हो जाए तो उसका समाज के अभावग्रस्त लोगों में वितरण करना अपरिग्रह कहलाता है। यह अपरिग्रह और ट्रस्टीशिप एक दूसरे के परिपूरक हैं। संपन्न लोगों को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि यदि उन्होंने ट्रस्टीशिप की भावना को जीवन में अंगीकार न किया और तदनुरूप आचरण को न बदला तो अभावग्रस्त लोगों के हृदय की ठीस, उनका विक्षोभ और आक्रोश उनके जीवन को अशांत और तनावों से युक्त बना देगा।